ओम शांति। हम सभी भगवान के गॉडली स्टूडेंट हैं। हम आप ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं परम आत्मा पढ़ा रहा है। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट होती है, तो जब भगवान पढ़ा रहा है तो एम ऑब्जेक्ट भी बहुत ऊंची होगी। वो एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति सबको मिलेगी, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का एम ऑब्जेक्ट है कि कर्मातीत बनना, पास वेद आनर बनकर मुक्ति में चलना। मुक्ति में सब जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं कर्मातीत बनकर मुक्ति में जाना, ये एम ऑब्जेक्ट है। मुक्ति में जाना एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मुक्ति में तो सारी दुनिया जाएगी, लेकिन उनके जाने में और जो ब्राह्मण आत्माएं कर्मातीत बनकर चलेंगी उनके जाने में बहुत अंतर है। जैसे लौकिक दुनिया में देखा होगा कि एक कोई वीआईपी आता है तो उसके चारों तरफ गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड, और उस गनमैन के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है, लोग उसे नमस्कार करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि एक चोर या बदमाश जब पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के बीच में ही चलता है। अब चल तो दोनों बंदूक के बीच में है, लेकिन अंतर कितना बड़ा है। उसको लोग सलाम कर रहे हैं, ये शर्म के मारे से नीचे किए जा रहा है। तो जो कर्मातीत बनकर चलेंगे उनको सब ब्राह्मण आत्माएं बहुत ऊंची नजर से देखेंगी। धर्मराज भी सलाम करेगा। तो ये ब्राह्मण आत्माओं का एम ऑब्जेक्ट है कर्मातीत बनकर चलना। दूसरा एम ऑब्जेक्ट है सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना, क्योंकि हमें सतयुग में आकर राज्य करना है। तो ये दोनों एम ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकल हमारे जीवन में आ जाए, अर्थात हम आत्माएं कर्मातीत भी बन जाए और सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी बन जाए, उसकी विधि बाप दादा मुरली में बता रहा है। मुरली के द्वारा हमें गाइडेंस मिल रही है। अब मुरली तो हम यहाँ थोड़ी देर सुनते हैं, एक घंटा, बाकी जो मुरली सुनी उसका उपयोग या प्रयोग कर्म क्षेत्र पर जाकर करेंगे। और जो ब्राह्मण आत्मा क्लास सुनने के बाद अगर मुरली का उपयोग नहीं किया या प्रयोग नहीं किया, वो ब्राह्मण आत्मा ना कर्मातीत बन सकती है, ना सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन सकती है। तो योग युक्त होकर मुरली सुनना, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ, बाबा अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुना रहा है। तो योग युक्त होकर सुनो और सुनी हुई बात को उपयोग और प्रयोग में लाओ। उपयोग अर्थात स्वयं के प्रति, स्वयं को संपन्न बनाने के प्रति, स्वयं को कर्मातीत बनाने के प्रति उपयोग में लाओ। दूसरा प्रयोग में लाओ अर्थात सेवा के प्रति, दूसरों के प्रति, पर योग दूसरों के प्रति। तो जो ब्राह्मण आत्माएं ये दोनों काम करती हैं, उपयोग और प्रयोग, वो संपूर्ण बन जाती है, कर्मातीत बन जाती है। क्योंकि गॉडली स्टूडेंट की विशेषता ही है, एक रेगुलर एंड पंक्चुअल मुरली सुनना, रेगुलर एंड पंक्चुअल, जो रोज और टाइम पर आना टाइम पर जाना, रेगुलर एंड पंक्चुअल, एंड होमवर्क अर्थात जो मुरली में सुना उसको उपयोग या प्रयोग में लाना, ये है स्टूडेंट की विशेषता। अगर स्टूडेंट रेगुलर एंड पंक्चुअल नहीं है तो पढ़ाई बुद्धि में बैठ नहीं सकती, ये उसको ड्रामा अनुसार सजा मिलेगी। सजा भगवान देता नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब जो यहाँ समर्पित हैं, जिनकी सेवा है उस समय, उनकी बात छोड़ के, बाकी जो ऐसे हैं और रेगुलर मुरली नहीं सुनते हैं या पंक्चुअल नहीं हैं, उनको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है, टीचर की दुआ नहीं मिलती, उनकी बुद्धि में पढ़ाई बैठेगी ही नहीं। पढ़ाई बैठने का मतलब है कि सुनने के बाद उमंग आए कि मुझे करना है करना है, और करने लग पड़े, वो नहीं होगा। जैसे सुनते हुए कोई श्रापित बुद्धि हो जाती है तो कुछ बुद्धि में बैठता नहीं, सुनते हुए जैसे अनसुना हो जाता है। अनसुना करते नहीं है लेकिन हो जाता है, श्राप बस, श्राप बाबा देता नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक मिलता है। तो रेगुलर एंड पंक्चुअल, तो जो बच्चे कच्चे मुरली का उपयोग और प्रयोग करते हैं उनको 8 फायदा होता है, 8 फायदा होता है। और उस 8 फायदा के आधार से वो कर्मातीत या सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। वो 8 फायदा है। पहला फायदा है व्यर्थ से बच जाते हैं, व्यर्थ से बचते हैं, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ देखना सुनना बोलना सबसे बच जाते हैं। दूसरी बात, समर्थ का खाता जमा होता जाता है, समर्थ का खाता जमा होता जाता है। तीसरी बात, भगवान की आज्ञा की पालना का फल भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। चौथी बात, भाग्य का खाता जमा होता जाता है, भाग्य बढ़ता जाता है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। चौथी बात, भाग्य बढ़ता जाता है। पांचवी बात है, भगवान का वरदान प्राप्त होता है, भगवान का वरदान प्राप्त होता है। छठी बात है कि ऐसी आत्मा से चलन और चेहरे से सेवा होती रहती है, चलन और चेहरे से सेवा होती रहती है। सातवीं बात है, ऐसी आत्मा बहुत जल्दी संपन्न बन जाएगी, जो उपयोग और प्रयोग करेगी ये बहुत जल्दी संपन्न बन जाएगी। और आठवीं बात है, कर्मातीत बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी। अब इन 8 में आप पहली बात देखो कि व्यर्थ से बच जाएंगे। व्यर्थ में हमारा संकल्प भी है, दृष्टि भी है, बोल भी है, कर्म भी है। तो व्यर्थ से अगर बचेंगे तो आप समर्थ बनेंगे। जैसे कई बार बाबा मुरली में एग्जाम्पल देता है कि कई बच्चे अमृत वेले योग में या मुरली के द्वारा बहुत ज्यादा आत्मा में शक्ति भर लेते हैं, उस समय स्वयं को महारथी बलवान समझते हैं, लेकिन सारा दिन व्यर्थ पर कंट्रोल न होने के कारण थोड़े समय के बाद शक्तिहीन हो जाते हैं। जैसे एक टंकी है पानी का, उसमें मोटर लगाकर फोर्स से पानी भर दो तो फोर्स से तो भर जाएगा, लेकिन अगर उसमें लीकेज है तो थोड़े समय के बाद टंकी फिर खाली हो जाती। तो व्यर्थ संकल्प लीकेज है। आपकी जितनी शक्ति जमा किया, जितना ज्ञान का खजाना भरा था कि मैं करूंगा अवश्य करूंगा उमंग आया था, वो अगर आप यहां से जाने के बाद उठते ही उपयोग या प्रयोग में नहीं ला रहे हैं तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, सोचना और थोड़ी देर में आत्मा खाली हो जाएगी। आपका जो उमंग उठा था करेंगे करेंगे, वो उमंग खत्म हो जाएगा। अगर उमंग खत्म हो गया तो सारा दिन फिर व्यर्थ ही चलता रहेगा। और व्यर्थ ऐसी चीज है, रावण का सबसे बड़ा शस्त्र रावण का व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ ही। सुनने में सबसे सहज है, व्यर्थ चला, लेकिन व्यर्थ सबसे बड़ा शस्त्र रावण का है। देखो, अगर कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो दो बात करता है। अगर वो दो बातों पर विजय प्राप्त कर ली तो वो देश को जीत लेगा। वो दो बात ये करता है कि सबसे पहले दुश्मन के जो कम्युनिकेशन लाइन है उसे तोड़ देता है, कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ देता है। अगर कम्युनिकेशन की लाइन को तोड़ दिया तो सोल्जर को, सिपाही को कुछ डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ी देर में उनको सरेंडर होना पड़ेगा। तो पहली बात करता है, कम्युनिकेशन लाइन को तोड़ता है, और दूसरी बात सप्लाई लाइन को तोड़ देता है। जिस रास्ते से सोल्जर सिपाही के लिए भोजन आ रहा था, सब सामग्री आ रही थी, पुल तोड़ दिया, रास्ता तोड़ देते हैं, तो अगर भोजन ही नहीं मिलेगा तो थोड़े समय के बाद सरेंडर हो जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प यही करता है। जब आपका व्यर्थ संकल्प चला तो भगवान से कनेक्शन टूट गया, कम्युनिकेशन टूट गई, और जैसे भगवान से कनेक्शन टूटा तो आपके बुद्धि की दिव्यता गायब हो गई। और बुद्धि की दिव्यता गायब हुई फिर आपके मन में व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाए। यथार्थ क्या है समझ नहीं पाएंगे। तो एक हो जाता है कम्युनिकेशन की लाइन टूटी, तो हमें यथार्थ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये भगवान का डायरेक्शन आप कैच नहीं कर पाते। और अगर भगवान का डायरेक्शन नहीं कैच कर पाए तो फिर किसके डायरेक्शन पर चलेंगे? ऑटोमेटिक माया या व्यर्थ संकल्प को वही चलेगा। तो पहली विधि कम्युनिकेशन की लाइन तोड़ता है। दूसरा, जब आपका व्यर्थ संकल्प चलता है तो योग नहीं लगता है। योग नहीं लगा तो बाबा से शक्ति आत्मा को नहीं मिलती। अगर बाबा से शक्ति नहीं मिली तो थोड़े समय के बाद आत्मा कमजोर हो जाती, और जैसे कमजोर हुई माया तुरंत आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। अगर मुरली सुनने के बाद जो सुना है उसको चाहे उपयोग में लाओ सो के प्रति, चाहे सेवा के प्रति लाते रहो, तो व्यर्थ से बच जाएंगे। पहला फायदा। दूसरा फायदा है आपका समर्थ का खाता बढ़ता जाएगा। जब व्यर्थ बचा, व्यर्थ से मुक्त हुए, तो आप बाबा के मुरली की बात ही सोचोगे, या उपयोग में लाओगे या प्रयोग में लाओगे। अगर उपयोग में लाए तो आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है, प्रयोग में लाए तो दुआ मिलेगी। तो दुआ भी और समर्थपना आता जाता है, इससे आपका समर्थ का खाता जमा होता जाता है। हमारा वर्तमान में व्यर्थ, जैसे अभी 25 अगस्त को जब दादी जी आई थी, तब उन्होंने संदेश दिया था, फिर बाबा ने भी संदेश दिया कि ब्राह्मणों में इस समय कोई बुरे संकल्प नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे। व्यर्थ का अर्थ ही है, व्यर्थ अर्थात उस संकल्प से जिससे ना आत्मा का कल्याण होता हो ना दूसरे का कल्याण होता हो, वो संकल्प व्यर्थ है। व्यर्थ संकल्प कमजोर बनाता है, आपकी शक्तियां नष्ट होती जाती हैं, आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। जितना आत्मा प्रकृति के बारे में सोचती है, प्रकृति अर्थात पांच तत्व, इसके बारे में सोचती है, जितना इसको देखती है, जितना इसका उपयोग करती है, उतना आत्मा का तेज खत्म होता है। तेज खत्म होता है, और जितना आत्मा प्रकृति से परे अर्थात इस शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखती है, प्रकृति का उपयोग करते हुए भी न्यारी हो करके उपयोग करती है, उतना आत्मा का तेज बढ़ता है। उदाहरण के रूप से आप भोजन खाते हो, अगर टेस्ट के रूप से खाया तो इसका मतलब आपने उपयोग में लाया, इससे आत्मा का तेज नष्ट होगा, आभा नष्ट होगी। अगर वही भोजन आप बाबा की याद में रहकर खाते तो आत्मा का तेज बढ़ता। प्रकृति पांच तत्व है, आत्मा चैतन्य है। चैतन्य चैतन्य को देखेगी, चैतन्य चैतन्य से कनेक्शन जोड़ेगी, तो आत्मा में बल आएगा, तेज आएगी, आभा आएगी। अगर जड़ से कनेक्शन जोड़ा तो उसकी आभा कम होती, तेज कम होगा, प्रकाश कम होगा, जिसको औरा कहते हैं वो कम होता जाएगा। जो बाबा कहता आपके पीछे लाइट दिखाई देती है, वो नहीं दिखाई दे, कम दिखाई दे। तो दूसरी बात है समर्थ का खाता जमा होता जाएगा, व्यर्थ से बचे हैं तो। तीसरी बात है भगवान की आज्ञा का फल, आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा का फल आपने भगवान की आज्ञा की पालना की है। क्योंकि भगवान की आज्ञा क्या है? बच्चे ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ, ज्ञान को उपयोग में लाओ, ज्ञान को प्रयोग में लाओ, सेवा करो, संपन्न बनो। अब अगर इस आज्ञा की पालना की तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भगवान का आशीर्वाद क्या काम करेगा? जैसे अभी आप पुरुषार्थ करते हो, जैसे पुरुषार्थ के लिए संकल्प करते हो और करना शुरू करते हो, तो आपका पास्ट का खाता, पास्ट का संस्कार रुकावट डालता है। होता है ना यही? इसीलिए हम कर नहीं पाते। नहीं तो सब ब्राह्मण चाहते हैं हम बाप समान बन जाएं, सब चाहते हैं महान बन जाएं, लेकिन इनका पास्ट का खाता रोकता है। जैसे आप संकल्प करोगे कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, तो पास्ट का संस्कार कि हम शरीर हैं तुरंत शरीर सामने आता है, मन की आंखों के सामने। आप सोचेंगे मैं परम धाम की निवासी हूं, याद आ जाएगी ये दुनिया, पास्ट का खाता है। तो पास्ट का खाता या पास्ट का संस्कार ये हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देता है, बहुत युद्ध चलती है। लेकिन मम्मा बाबा को बाबा का आशीर्वाद ये रोक नहीं पाया। भगवान का आशीर्वाद क्या करता है? मम्मा बाबा सबके सामने पास्ट के संस्कार या पास्ट का खाता सबके पास है, लेकिन जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है उसको पास्ट का खाता रुकावट नहीं डाल पाता है। भगवान का आशीर्वाद पास्ट के खाते को दबा देता है। भगवान का आशीर्वाद साधारण बात नहीं है, दबा देता है। अभी हमारा पास्ट का खाता पावरफुल हो जाता है, हम दब जाते हैं, लेकिन जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है उसे पास्ट का खाता दबा देता है, पुरुषार्थ में रुकावट नहीं आने देता है। अगर शरीर बीमार भी पड़ा तो बीमारी का अनुभव नहीं होने देता है। कोई समस्या आई तो समस्या मन के ऊपर प्रभाव नहीं डालने देती। ये भगवान का आशीर्वाद काम करता है, इसलिए वो आत्मा एकदम निर्विघ्न बन करके दौड़ती जाती है। ये भगवान का आशीर्वाद काम करता है। और आशीर्वाद की प्राप्ति का आधार ही है आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी बच्चे को ही आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद है आपके भाग्य का खाता बढ़ता जाता है। ये आज आपको नई बात बताता हूं कि भाग्य का खाता बढ़ता जाता है। भगवान ने जो काम कहा, चाहे स्वप्रति चाहे सेवा प्रति, चाहे उपयोग चाहे प्रयोग, अगर आप उसको किया तो आपका भाग्य का खाता बढ़ जाएगा। अगर नहीं किया तो तो आपका भाग्य एकदम उस बात में डाउन चला जाएगा। एक उदाहरण, अपने रमेश भाई को तो सब जानते हैं, जो अपने मुख्य ट्रस्टी हैं, जो इसके अपना जितना अकाउंट का है उन्हीं के पास है, रमेश साहब, वो अपना अनुभव बताते कि एक बार बाबा ने हमें एक आर्टिकल दिया, ये बहुत ध्यान से सुनना, आर्टिकल दिया और बाबा ने शाम को दिया और कहा इसको तुम पढ़ करके करेक्ट करके दो, सुबह ये आर्टिकल हमें भेजना है। तो रमेश भाई ने शाम को दिया था तो सोचा ठीक है, तो छोटा सा आर्टिकल है, सुबह करेक्ट कर देंगे, थोड़ी देर तो लगेगा। उन्होंने सुबह पर छोड़ दिया, रात को नहीं किया, और सुबह कुछ ऐसा काम क्लास में चले गए तो बोला क्लास के बाद आते करेक्ट करके बाबा को दे दूंगा। तो जब क्लास में गए, क्लास पूरा हुआ तो बाबा ने पूछा रमेश से, बच्चे तुमने करेक्ट किया, उसे दे दो, अभी भेजना है। तो बोला बाबा मैं अभी करके दे देता हूं, 5 मिनट तो लगेगा। बाबा ने कहा बस उसको वापस दे दो। रमेश भाई इतना कम से कम 5-7 बार बाबा से कहा, बाबा आप मुझे दे दो, मैं अभी करेक्ट करके दे देता हूं, आप मुझे दे दो, अभी करेक्ट करके दे देता हूं। बाबा ने कहा ना, भगवान का काम तो रुकेगा नहीं, अब जिसका भाग्य बनना है उसका भाग्य बनेगा, तुम्हारा भाग्य तो गया। बहुत बड़ी बात है ये, जो बाबा ने कहा अगर किया तो भाग्य बनेगा, नहीं किया तो नुकसान कुछ नहीं होगा, भगवान का काम तो होना ही है, दूसरे का भाग्य भगवान बना देगा। इसलिए कई ऐसे सोचते हम ये नहीं करेंगे तो शायद कुछ काम रुक जाएगा, भगवान का काम कुछ रुकने वाला नहीं। फिर बाबा ने रमेश भाई को आर्टिकल दिया नहीं, दूसरे से करेक्ट करवाया। तो जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं, जो मुरली सुनते उपयोग में लाते हैं, जो भगवान ने कहा वो करते हैं, तो उनका भाग्य बढ़ता जाता है। भगवान आया ही है बच्चों का भाग्य बनाने के लिए, और भाग्य बनाने की विधि बता रहा है, अब उस विधि पर चलेंगे तब तो भाग्य बनेगा, अगर विधि पर नहीं चलेंगे तो कहां से बनेगा। इसके बाद भगवान की आज्ञा की पालना अर्थात उपयोग प्रयोग में लाने से आप बहुत जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। संपूर्ण बनने की विधि है, देखो अगर आप रोज रोज मुरली सुनने के बाद एक पॉइंट अगर आप रोज अपने लिए ले लो, एक पॉइंट अगर एक पॉइंट रोज अपने लिए प्रयोग में लाओ, चाहे सेवा प्रति चाहे सो प्रति, अगर कोई वो पॉइंट सारे दिन मीन 7-8 घंटा 10 घंटा अगर उस पॉइंट पर कोई लगातार अटेंशन दे दे, तो वो पॉइंट आपकी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बोलो पांडव, बन जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण हो जाए तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, शक्तियां संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन नहीं, हम करते नहीं, ना उपयोग करते हैं ना प्रयोग में लाते। आप एक दिन करके देखो, हमने तो आज की एक पॉइंट लिया था, बस वरदान से मन बुद्धि और दिल जब योग में बैठो, तीनों एक साथ ही हो, तो आपका योग सहज हो जाएगा, प्रार्थना आराधना सब छूट जाएगी, समानता का अनुभव होने लगेगा। और उसका देखा, जितना अटेंशन थोड़ा सा देते हैं तो वो अभ्यास जैसे बैठते हैं तुरंत कनेक्शन जुड़ जाता है, प्राप्ति होने लगती है। तो अगर कोई एक बात पर अटेंशन दे दे, रोज देते रहे, तो संपूर्णता जल्दी प्राप्त हो सकती है। हम सब क्या करते हैं, मन को खाली छोड़ देते। मुरली सुनी, उसके बाद मन को खाली छोड़ दिया, कोई काम नहीं दिया। और आप सब जानते हैं, अगर मन को काम नहीं दिया तो क्या कहा गया है, खाली मन, फिर शैतान थोड़ी संपूर्णता को प्राप्त करेगा क्या, शैतान थोड़ी कर्मातीत बनेगा क्या। इसलिए संपूर्ण बन जाएंगे। इसके बाद देखो, अगर उपयोग या प्रयोग में लाते हो तो इससे आप कर्मातीत जल्दी बन जाए। कर्मातीत, क्योंकि सारा दिन किसी न किसी रूप से बाबा की याद रहेगी, चाहे बाप के रूप से, चाहे टीचर के रूप से, चाहे सतगुरु के रूप से, क्योंकि या तो उपयोग कर रहे हो ज्ञान का या प्रयोग में ला रहे। इससे आपका बुद्धि योग बाबा के साथ जुटा ही रहेगा। तो जितना आत्मा को निरंतर बाबा की याद बनी हुई है, उतना आत्मा का विक्रम विनाश होता जा रहा है, आत्मा प्योर बनती जा रही है, आत्मा शुद्ध बनती जा रही है। तो कर्मातीत बन जाएंगे। इसके बाद है, चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। ये अपने चेहरे पर प्रभाव, जो आप सोचते हैं उसका प्रभाव इस चेहरे पर पड़ता है। जो चीज आप सोचते हैं, जो आपका संकल्प चलता है, उसका पहला प्रभाव नयन पर, दूसरा मस्तक पर, तीसरा चेहरे पर, तीन मुख्य, और यही मुख्य है। कोई देखता है तो क्या देखेगा, पहले यही देखता है। तो चलन और चेहरा, आपका चेहरा जो सोचते हैं वो चेहरा बताता है। अगर आप देखो कोई खुशी की बात आप सोच रहे हैं तो आपका चेहरा खिल जाएगा या नहीं, आंखें वैसे हो जाएंगी या नहीं, ऑटोमेटिक हो जाती। तो जब आप बाबा की बातें सोच रहे हो या प्रयोग में ला रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो उससे आपका नयन भी वैसे बनता जा रहा है, आपका मस्तक भी उसी तरह से चमक रहा है और आपका चेहरा भी खिला रहेगा। ऑटोमेटिक चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। जो हम चाहते हैं, बाबा जो चाहता है कि आपके चलन और चेहरे से सेवा होती रहे, ऐसे चेहरे से सेवा नहीं होगी। और अगर ज्ञान या बाबा की याद आपके बुद्धि में चल रही है तो आपका चाल चलन बहुत रायल हो जाएगा। आप खुद अनुभवी होंगे, अगर आपको बाबा की याद है तो आप कैसे चलते हैं, और जब बाबा की याद नहीं है तब कैसे चलते है, अनुभव या नहीं? बाबा की याद नहीं है तो फट 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 चलेंगे, और अगर याद है बहुत गंभीरता से चलेंगे। साकार बाबा था, अगर साकार बाबा के समय किसी का चप्पल थोड़ा आवाज कर देता था, घिस पिस थोड़ा सा भी कुछ आवाज, फट फट चला, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं है, कलयुगी मानव है। इतना कड़ा शब्द प्रयोग करता था, ये ब्राह्मण नहीं है लेकिन कलयुगी मानो। और मम्मा क्या कहती थी, अगर किसी का चप्पल नहीं ठीक से चल पाया, खिस फिस आवाज होती है चलने में, तो मम्मा कहती थी जिसका चप्पल घिस पिस हो रहा है उसका पद भी घिसा पीटा ही है। जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकता है वो रॉयल्टी का पद कहां से पाएगा। जब अभी चाल चलन रॉयल्टी की हो तब रॉयल पद मिले, और उसका आधार है मीठे बाबा की याद या ज्ञान का मनन। वो करते चलो आपके चलन में परिवर्तन हो जाएगा, बोल में परिवर्तन हो जाएगा, देखने में परिवर्तन हो जाएगा, ऑटोमेटिक। फिर आपके चाल और चलन और चेहरे से सेवा होती रहेगी। आठवीं बात है, भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त होता है। जो करते हैं उसके द्वारा भगवान का वरदान प्राप्त होता है। आप कुछ लोग जानते भी होंगे, जो अपने जगदीश भाई थे जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है, लिटरेचर जो लिखे हैं सारी किताबें उन्हीं ने लिखी है। एक रात को बाबा ने सबको होमवर्क दिया कि ये करके सुबह बाबा को दिखाना, पूरे क्लास में होमवर्क दिया कि सुबह बाबा को ये दिखाना सब। तो जैसे रात का क्लास पूरा हुआ, सब उठकर गए तो लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो सब क्या लिखेंगे, तो सब सो गए। लेकिन जगदीश भाई के मन में था नहीं, भगवान ने कहा है मुझे करना ही, तो क्या करें, लाइट है नहीं, तो घर से बाहर निकल कर गए। पांडव भवन की बात है, वो जो रोड लाइट थी उस रोड लाइट पर बैठ करके लिखा। और जब सुबह बाबा ने पूछा किसने लिखा, तो सबका एक ही जवाब था, बाबा लाइट नहीं थी कैसे लिखे। जगदीश भाई ने हाथ, तब बाबा ने उसी समय जगदीश भाई को संजय का वरदान, विद्यापति का वरदान, गणेश का वरदान, सारा वरदान उसी समय भगवान ने जगदीश भाई को दे दिया। ये वरदान किस आधार से मिला? जब भगवान के आज्ञा की पालना की, उसको जो बाबा ने कहा उसको प्रयोग में लाया, करके दिखाया, फिर भगवान का वरदान मिल गया। तो जो बाबा मुरली में कह रहा है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल करते हो तो भगवान का वरदान प्राप्त होता है, और भगवान का वरदान फिर निमित्त आप, और करेगा सब कुछ बाबा। सिर्फ निमित्त आप बनोगे फिर मेहनत खत्म हो जाएगी। जैसे देखो अपनी गुलजार दादी है, जब शुरू शुरू में आई तो बहुत मेहनत किया इन्होंने, बहुत अंतर्मुखी थी, बहुत तपस्या का टेंशन दिया, तो उस समय की तपस्या मेहनत देखकर बाबा ने गुलजार दादी को वरदान दिया था। हैदराबाद सिंध की बात कि इस बच्ची के नयन बहुत रूहानी हैं, आगे चलकर इस बच्ची के नयन बहुत सेवा करेंगे, इस बच्ची के बोल बहुत मीठे हैं, आगे चलकर बहुत सेवा करेंगे। वरदान तब दिया, और अभी देखो इतने समय से स्वयं भगवान ही गुलजार दादी के तन में बैठकर मुख के द्वारा बोल रहा है, नयनों के द्वारा दृष्टि दे रहा है। तो ये वरदान लेने में मेहनत है, जब वरदान दे दिया फिर वरदान अपने आप काम करता है, और वरदान लेने की विधि है जो भगवान ने कहा उसी समय करने लग जाओ, भगवान की आज्ञा सिर माथे, तो वरदान मिल जाएगा। इसलिए आप मुरली सुनते समय योग युक्त होकर सुनो, और फिर मुरली का उपयोग और प्रयोग में लाओ, तो आत्मा जल्दी ही कर्मातीत, संपन्न और संपूर्ण बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।